بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پرستت ہے۔ شروتاؤں، آج کے کارکرم کے آرمبھ میں آپ سورہ فصلت کی 30ویں سے لے کر 33ویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عباس امام جمعہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة من غفور رحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے اور پھر اس پر دڑھتا پوروک جمے رہے، ان پر فرشتے یہ سندیش لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی شوکا کل ہو، اور اس سورگ سے پرسن ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم سانسارک جیون میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور پرلے میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں اچھا ہوگی، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم مانگ کرو گے۔ یہ اتینت کشماشیل اور دیاوان ایشور کی اور سے تمہارے آتتھ کا سادھن ہے، اور اس ویکتی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایشور کی اور بلائے، اچھے کرم کرے اور یہ کہے کہ نشچت روپ سے میں اس کے آگیاکاری بندوں میں سے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروتاو، ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ برابر 7,445 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ پتر ویوہار کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir، جبکہ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ فیس بک پر ہمارا پیج ہے facebook.com/irib hindi، اور اگر آپ واٹس ایپ کے مادھیم سے ہم سے سمپرک کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0098-90-350-65492۔ شروتا، آج منگلوار ہے، آبان کی 20، ربیع الاول کی 24 اور نومبر کی 10 تاریخ۔ ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا نوٹ کر لیجئے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے انتراشٹریہ سماچار آپ کی سیوا میں پیش کیے جائیں گے، پھر آپ سن سکیں گے راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم۔ راجنیتک چرچا کے بعد ہم آپ کو انتراشٹریہ وگیان دیوس کے اپلکش میں ایک وشیش کاریکرم سنوائیں گے، اور ہماری آج کی سبھا کا انتیم کاریکرم ہوگا قرآنی قصے۔ اب آپ ریڈیو تہران سے انتراشٹریہ سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی روحانی نے کہا ہے کہ امریکی چناؤ کے نتیجے نے بتا دیا ہے کہ صرف دنیا والے ہی نہیں، امریکی بھی اس دیش کی سرکار کی نیتیوں سے تنگ آ گئے تھے۔ ایران میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 10,000 سے زیادہ لوگ کورونا سے سنکرمت ہوئے، جبکہ 453 لوگوں کی موت ہو گئی۔ بہار میں ودھان سبھا چناؤ کے پریناموں اور رجحانوں کے انوسار راجگ اور مہا گٹھ بندھن میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ اور امریکہ کے راشٹرپتی نے اس دیش کے رکشا منتری کو ان کے پد سے ہٹا دیا ہے۔ اور اب آپ حسن عباس سے وستار سے سماچار سنیے۔ راشٹرپتی روحانی نے کہا ہے کہ امریکی چناؤ کے نتیجے نے بتا دیا ہے کہ صرف دنیا والے ہی نہیں، امریکی بھی اس دیش کی سرکار کی نیتیوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے منگلوار کو شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے 20ویں شکھر سمیلن میں، جو روس کی ادھیکشتا میں آن لائن آیوجت ہوا، بھاشن کرتے ہوئے اچھے پڑوس، وشواس استھاپنا اور وارتا جیسے ایران کی سیدھانتک نیتیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ پشچمی ایشیا کے ایک اہم سمپرک راج مارگ کے روپ میں ایران کھیتر اور شنگھائی سنگٹھن کے بہت سے دیشوں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کشمتا رکھتا ہے۔ انہوں نے COVID-19 کے مقابلے کے لیے ایک جٹ رویہ اپنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ایران کورونا سے سنگھرش میں اپنے انوبھو شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیوں سے ساجھا کرنے کے لیے تیار ہے۔ راشٹرپتی روحانی نے اپنے سمبودھن میں اس بات کا الیکھ کرتے ہوئے کہ ٹکاؤ سرکشا صرف سہیوگ و شانتی سے حاصل ہوتی ہے، کہا کہ ایران اپنے گھٹکوں اور شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے ساتھ مل کر آتنکواد، چرم پنتھ اور مادک پدارتھوں سے پربھاوی سنگھرش میں سہیوگ کرتا رہے گا۔ انہوں نے سینیہ جھڑپیں بند کرنے اور وواد کے کوٹنیتک سمادھان کی پرکریا شروع کرنے کی آرمینیا و آذربائیجان کی سہمتی پر پرسنتا جتاتے ہوئے کہا کہ ایران ہر اس کوشش کا سواگت کرتا ہے جس سے کھیتر میں ٹکاؤ و نیاپورن شانتی، سرکشا و استھرتا استھاپت ہو۔ راشٹرپتی روحانی نے اسی طرح اس بات پر بل دیتے ہوئے کہ امریکی چناؤ کے نتیجے نے بتا دیا ہے کہ صرف دنیا والے ہی نہیں، امریکی بھی اس دیش کی ورتمان سرکار کی غلط نیتیوں سے तंग आ गए हैं, कहा कि अब अमेरिका में नए निर्वाचित होने वालों की बारी है कि वे अपने राष्ट्र के संदेश को सही ढंग से समझें और अपनी विदेश नीति व अन्य देशों व राष्ट्रों के संबंध में परिवर्तन के इस इरादे को व्यवहारिक बनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया है कि ईरान में पिछले 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए जबकि 453 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने मंगलवार को देश में कोरोना के ताजा आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,339 नए मामले सामने आए, जिनमें से 3,088 को अस्पतालों में भर्ती कराया गया जबकि बाकी अन्य को आवश्यक निर्देशों के साथ होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अब ईरान में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 7,03,288 हो गई है। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक देश में 5,30,694 लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ईरान में 453 लोगों की कोरोना के घातक वायरस से संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने बताया कि अब देश में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 39,202 हो गई है। इस बीच पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 5,10,00,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से कम 12,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3,60,00,000 से अधिक लोग कोरोना को हरा चुके हैं। अमेरिका कोरोना के करीब 1,05,00,000 मरीजों के साथ दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या भी सबसे अधिक यानी 2,44,000 है। भारत के राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं और अब तक की जीती गई सीटों और रुझानों के अनुसार राजग और महागठबंधन में कांटे का मुकाबला जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के आ रहे रुझानों में राजग 120 सीटों पर और महागठबंधन 115 सीटों पर आगे चल रहा है। राजग 11 सीटों पर जीत दर्ज कर चुका है जबकि महागठबंधन ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। जीती गई सीटों और बढ़त के हिसाब से राजग और महागठबंधन में बढ़त का फासला बेहद कम हो चुका है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। लोक जनशक्ति पार्टी अभी किसी भी सीट पर आगे नहीं चल रही है। भारत के स्थानीय समय के अनुसार शाम 6 बजे चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि शाम 5:30 बजे तक 2.7 करोड़ ईवीएम वोटों को गिना जा चुका था जबकि विधानसभा चुनाव में करीब 4 करोड़ वोट डाले गए थे। इस बीच मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के उपचुनाव की 28 सीटों के परिणाम सामने आ रहे हैं और भाजपा को 28 में से 19 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिलने का अनुमान है। उधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। इनमें से 3 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं जिनमें से 2 भाजपा और 1 सपा के खाते में गई है। 4 अन्य सीटों का परिणाम आना बाकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 10 नवंबर मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल बैठक में मुलाकात कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की काउंसिल की बैठक में 20 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत 8 देशों के राष्ट्र प्रमुख बैठक में हिस्सा लेंगे। 4 ऑब्जर्वर देशों के राष्ट्र प्रमुख भी मौजूद रहेंगे जिनमें ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया शामिल हैं। इस संगठन की पहली वर्चुअल बैठक है। राष्ट्र प्रमुखों की बैठक संगठन का मुख्य हिस्सा है और इसी में तय होता है कि अगले साल संगठन का एजेंडा और मुख्य लक्ष्य क्या होगा। जानकारों का कहना है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ कई महीनों से चल रहे तनाव के बीच आयोजित होने वाली बैठक में भारत को स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश का मौका मिलेगा। भारत इससे पहले भी SCO के बैनर तले ही विवाद को सुलझाने का प्रयास कर चुका है। भारत में दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी टीवी चैनलों रिपब्लिक टीवी, उसके एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी, टाइम्स नाउ और उसके एडिटर ग्रुप एडिटर नाविका कुमार और अन्य से सुशांत सिंह राजपूत केस में एजेंसियों की जांच के संबंध में गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर जवाब तलब कर लिया है। पिछले महीने अक्टूबर में बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से संबंधित केस में बॉलीवुड की हस्तियों के मीडिया ट्रायल, उनके नाम लेने और पूरे बॉलीवुड को अपराधी ठहराने पर दिल्ली हाईकोर्ट में दोनों निजी टीवी चैनलों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। بالی ووڈ انڈسٹری کی 4 ایسوسیشنوں اور 34 نامور فلم نرماتاؤں نے 2 ٹی وی چینلوں ریپبلک ٹی وی اور ٹائمز ناؤ کے خلاف نردیش جاری کرنے کی درخواست کی تھی. اس کے ساتھ ہی ان چینلوں نے ایگزیکٹو ایڈیٹرز اور انی پترکاروں اور انڈسٹری سے جڑے لوگوں کے خلاف غیر ذمہ دارانہ بیان دینے یا پرکاشت کرنے سے روکنے کا نردیش دینے کی بھی مانگ کی تھی. ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے انوسار جسٹس راجیو شکدر نے چینلوں اور ان کے اینکروں کو یہ نردیش بھی دیا ہے کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یاچکا کرتاؤں کے خلاف کوئی اپمان جنک سامگری نہ دکھانے اور اپلوڈ نہ کرنے کو سنشچت کیا جائے. جسٹس شکدر نے کہا ہے کہ چینلوں اور اینکروں کو یہ سنشچت کرنا چاہیے کہ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور چینلوں پر کوئی اپمان جنک پدارتھ اپلوڈ یا پرسارت نہ ہو. انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیوز چینل کاریکرم کے نیموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں. ٹاٹا نے بھارت کی کیندر سرکار کے ساتھ مل کر COVID-19 کی تیز جانچ کے لیے ایک نیا ٹیسٹ وکست کیا ہے. اس کی مدد سے RT-PCR ٹیسٹ سے زیادہ جلدی اور ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کے ادھک وشوسنیہ نتیجے حاصل کیے جا سکیں گے. پراپت رپورٹ کے مطابق RT-PCR کی طرح اس نئے ٹیسٹ کے لیے بھی سیمپل ناک سے لیے جاتے ہیں. بھارت کے پرسدھ ٹاٹا سموہ کی کمپنی ٹاٹا میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹکس جلد ہی چنئی استھت اپنے سنیتر میں اس کے 1,000,000 کٹ بنانا شروع کر دے گا اور اس کے بعد اتپادن کی ماترا بڑھائے گا. ٹیسٹ کا نام ٹاٹا MD چیک ہے اور کمپنی کے CEO گریش کرشن مورتی نے رویٹرز کو بتایا ہے کہ اس سے 90 منٹ میں جانچ کے نتیجے معلوم کیے جا سکتے ہیں. یہ سماچار آپ کی سیوا میں ریڈیو تہران سے پرسارت کیے جا رہے ہیں. امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کو سن 2020 کے امریکہ کے راشٹرپتی چناؤ میں ملی شرمناک ہار کی گاج اس دیش کے رکشا منتری مارک ایسپر پر گری ہے. ٹرمپ نے انہیں پد سے ہٹا دیا ہے. ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ راشٹریہ آتنکواد نیرودھی کیندر کے نیدیشک کرسٹوفر ملر کو تتکال پربھاؤ سے انتریم رکشا منتری بنایا جاتا ہے. غورطلب ہے کہ ٹرمپ اور ایسپر کے سمبندوں میں کافی سمے سے کھٹاس ہے. پراپت رپورٹ کے مطابق امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ چناؤ میں ملی کراری ہار کو پچا نہیں پا رہے ہیں. وہ ہار ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں, جبکہ ان کی پتنی اور امریکہ کی فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ نے بھی انہیں چناؤ میں ہار سویکار کرنے کی صلاح دی ہے. ان کے داماد جیریڈ کوشنر اور انیہ قریبی پہلے ہی ٹرمپ سے ہار مان لینے کی گہار لگا چکے ہیں. امریکہ کے راشٹرپتی چناؤ میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن نے 270 سے زیادہ الیکٹورل ووٹ کے ساتھ بہومت حاصل کیا ہے. حالانکہ ٹرمپ نے ابھی نرمی کے کوئی سنکیت نہیں دیے ہیں. ٹرمپ نے اپنے آخری بیان میں کہا ہے کہ جو بائیڈن غلط طریقے سے خود کو وجیتا کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور دوڑ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. روس نے اعلان کیا ہے کہ راشٹرپتی ولادیمیر پوتین, ان کے آذربائیجانی سمکش الہام علیف اور آرمینیا کے پردھان منتری نکول پاشینیان نے کراباخ میں سنگھرش ویرام کے لیے سنیکت اعلان پر ہستاکشر کر دیے ہیں. روسی راشٹرپتی نے کہا ہے کہ 10 نومبر کی آدھی رات سے سنگھرش ویرام لاگو ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ سمجھوتے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی سینائیں اس سمے جہاں پر ہیں وہیں رک جائیں گے, جبکہ کراباخ کے اندر اور اس سے ملنے والے آرمینیا کے سیماورتی علاقوں پر شانتی سینا تعینات ہوگی. اس سے پہلے آرمینیا کے پردھان منتری پاشینیان نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے پیڑا دائک سنگھرش ویرام سمجھوتے پر ہستاکشر کیے ہیں تاکہ جنگ رک جائے اور آنے والے دنوں میں ہم اس بارے میں راشٹر کو سمبودھت کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے کی باتیں اتنی پیڑا دائک ہیں کہ انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا, مگر سامرک استھتی کے گہرے وشلیشن اور جانکاروں کے مولیانکن کے آدھار پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. آرمینیائی پردھان منتری نے کہا کہ یہ سمجھوتا اس سنتشٹی کے بعد کیا گیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی سمادھان سمبھو نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے انتراشٹریہ سماچار سماپت ہوئے.
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز.
راجنیتک چرچا.
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से अपनी विदाई से पहले इस देश के रक्षा मंत्री को उनके पद से हटा दिया है।
The transition turbulent already with President Trump announcing via tweet Defense Secretary Mark Esper has been terminated. The president this summer mocking him as Yesper.
ट्रंप ने सोमवार को ट्वीट के माध्यम से मार्क एस्पर के हटाए जाने की सूचना दी और कहा कि क्रिस्टोफर मिलर को कार्यवाहक रक्षा मंत्री बनाया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मतभेदों के कारण ट्रंप ने मार्क एस्पर को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखाया है। इसराइल में प्रधानमंत्री के पद को लेकर नेतन्याहू और बेनी ग्रैंट्स के बीच मतभेद दिन प्रतिदिन अधिक गहरे होते जा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप के व्हाइट हाउस से चले जाने की उल्टी गिनती आरंभ हो जाने के बाद ये मतभेद और अधिक हो जाएंगे। इसी प्रकार राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह से ट्रंप अमेरिका में अकेले पड़ गए, उसी तरह अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में नेतन्याहू अकेले पड़ गए हैं और कई दिन से उनके खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। श्रोताओ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि बिहार में हुए चुनावों की मतगणना जारी है।
अभी तो जीते नहीं है, लेकिन अभी आप लोग जश्न में हम भी मना नहीं सकते जब तक कि पूरा कंफर्म ना हो जाए।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से अपनी विदाई से पहले इस देश के रक्षा मंत्री को उनके पद से हटा दिया है। समीक्षा पेश करें साथी अख्तर अब्बास।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से अपनी विदाई से पहले इस देश के रक्षा मंत्री को उनके पद से हटा दिया है। ट्रंप ने सोमवार को ट्वीट के माध्यम से मार्क एस्पर के हटाए जाने की सूचना दी और कहा कि क्रिस्टोफर मिलर को कार्यवाहक रक्षा मंत्री बनाया गया है। इससे पहले अमरीकी रक्षा मंत्रालय के 3 अधिकारियों ने कहा था कि मार्क एस्पर ने अपना त्यागपत्र तैयार कर लिया है और शीघ्र ही वो अपने पद से त्यागपत्र देने वाले हैं। NBC ने भी कुछ समय पहले घोषणा की थी कि ट्रंप से मतभेद के कारण इस पर 3 महीने से अपने पद से त्यागपत्र देने के प्रयास में हैं। मार्क एस्पर ने कई दिन पहले एक साक्षात्कार दिया था जिसे कल प्रसारित किया गया। इस साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि मैं जी श्रीमान कहने वाला नहीं था। हालिया महीनों में इस बारे में बहुत अधिक अफवाहें आ रही थीं कि ट्रंप कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं और ट्रंप जिन लोगों की छुट्टी करने वाले हैं उनमें मार्क एस्पर का नाम भी शामिल है। बहुत से मामलों में ट्रंप और मार्क के बीच मतभेदों के दृष्टिगत इस बात की संभावना थी कि ट्रंप उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप और एस्पर के बीच मतभेद बहुत अधिक हो गए थे, जिसके दृष्टिगत एस्पर को बाहर का रास्ता दिखाए जाने पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। ट्रंप और एस्पर के बीच पहली बार मतभेद जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद करने के लिए अमरीका की ओर से किए गए आतंकवादी हमले को लेकर हुआ था। ट्रंप का दावा था कि जनरल कासिम सुलेमानी अमरीका के 4 दूतावासों पर हमले की योजना बना रहे थे, जबकि मार्क एस्पर का मानना था कि इस दावे को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है। एक अन्य विषय जो ट्रंप और एस्पर के बीच मतभेद का कारण बना, अफगानिस्तान और इराक से अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाने के बारे में ट्रंप का वादा था, जिस पर उन्होंने अमल नहीं किया। इसी प्रकार ट्रंप ने कहा था कि वो जर्मनी में तैनात अमरीकी सैनिकों में से 12,500 को वापस बुलाएंगे, पर इसे भी ट्रंप ने अमली नहीं किया और इस संबंध में इस पर अपनी नाराजगी को न छिपा सके। और इस संबंध में ट्रंप से उनके मतभेद इस सीमा तक पहुंच गए कि वो मार्क एस्पर को हटाने के बारे में सोचने लगे। ट्रंप और एस्पर के बीच मतभेद उस समय अपने चरम पर पहुंच गया जब ट्रंप ने अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के विरोध में सड़क पर निकलने वाले विरोधियों के दमन के लिए सेना भेजने का आदेश दिया और एस्पर ने खुलकर ट्रंप के इस आदेश का विरोध किया था। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक विशेषज्ञ अली उम्मीदी का कहना है कि अमेरिका में सबसे अकेले ट्रंप हैं, क्योंकि उनके निकटतम लोगों ने भी उनसे दूरी बना ली है।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
اسرائیل میں پردھان منتری کے پد کو لے کر نتنیاہو اور بینی گرنٹس کے بیچ مت بھید دن پرتی دن ادھک گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے چلے جانے کی الٹی گنتی آرمبھ ہو جانے کے بعد یہ مت بھید اور ادھک ہو جائیں گے۔ اسی پرکار راجنیتی کے وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ امریکہ میں اکیلے پڑ گئے ہیں، اسی طرح اوائد ادھکرت فلسطین میں نتنیاہو اکیلے پڑ گئے ہیں اور کئی دن سے ان کے خلاف ہونے والے پردرشنوں کو اسی پریپیکش میں دیکھا جا سکتا ہے۔
اسرائیل میں پردھان منتری کے پد کو لے کر نتنیاہو اور بینی گرینٹس کے بیچ مت بھید دن پرتی دن ادھک ہوتے جا رہے ہیں۔ وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے چلے جانے کی الٹی گنتی آرمبھ ہو جانے کے بعد یہ مت بھید اور بھی ادھک گہرے ہو جائیں گے، وشیش کر اس لیے کہ اویدھ ادھیکرت فلسطین میں جاری پردرشن 20ویں سپتاہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ پردرشنکاری نتنیاہو کے استعفے کی لگاتار مانگ کرتے آ رہے ہیں۔ ایک فلسطینی ناگرک کے انوسار زایونی شاسن کی واستوکتا آج کل ادھک دکھائی دے رہی ہے۔ یہ شاسن آج کل نتنیاہو کے ویکتیگت اور ان کی پارٹی کے ہتوں کو پورا کرنے کی چیشٹا میں ہے۔ اسرائیل آج کل بے بسی سے کاریوں کے سنچالن کے پریاس میں ہے۔ کورونا وائرس پھیلنے کے کارن آرتھک استھتی وشم ہو چکی ہے اور یہی وشے نتنیاہو کے خلاف پردرشنوں کا کارن بنا ہوا ہے۔ اسی بیچ فلسطینی سنگھرش کرتاؤں کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پٹی یا لبنان پر حملہ کر کے دھیان بٹانے اور سنکٹ کو اسرائیل سے باہر لے جانے کی چیشٹا کی تو اسے کڑے اور پیڑا جنک جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
نحن كمقاومة فلسطينية نعتبر انفسنا جاهزون۔
ایک فلسطینی سنگھرش کرتا کہتا ہے کہ ہم سنگھرش کرتا کے روپ میں زایونی شاسن کے ہر پرکار کے سمبھاوت حملے کے جواب کے لیے تیار ہیں اور آج ہم پہلے سے ادھک ایک جٹ ہیں۔
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔
ہم سوچتے ہیں کہ وہ ایک جٹ ہیں پرنتو ان کے دل ایک دوسرے سے الگ و بٹے ہوئے ہیں۔ یہ پویت قرآن کی آیت ہے جو زایونی شاسن کی موجودہ واستوکتاؤں پر چریتارتھ ہے۔ غزہ سے IRIB کے لیے ابراہیم احمد کی رپورٹ۔
شوتاؤ، جیسا کہ آپ کو گیات ہے کہ بہار میں ہوئے چناؤں کی مت گڑنا جاری ہے۔ بہار کے ودھان سبھا چناؤ پریڑام آنے میں دیری ہو رہی اور اس کی وجہ کورونا وائرس بتایا گیا ہے۔ سماچار لکھے جانے تک بی جے پی 73، RJD 74، JDU 43 اور کانگریس 20 سیٹوں پر آگے ہیں، جبکہ مہا گٹھ بندھن 111 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے۔ ساتھ ہی NDA گٹھ بندھن 124 سیٹوں پر آگے چل رہا ہے۔ پوری جانکاری کے ساتھ دلی سے شمشاد کاظمی۔
بہار ودھان سبھا چناؤں میں ڈالے گئے متوں کی گنتی ابھی جاری ہے اور اب تک کے رجحان سے ایسا لگتا ہے کہ راشٹریہ جنتانترک گٹھ بندھن ایک بار پھر راجیہ میں سرکار بنانے جا رہا ہے۔ بھاجپا جو پچھلے ودھان سبھا چناؤں میں تیسرے نمبر پر تھی، اس چناؤں کے رجحان میں اب تک پہلے نمبر پر ہے۔ رجحان میں NDA کو سپشٹ بہومت ملتا دکھائی دے رہا ہے۔ NDA نے 128 سیٹوں کے ساتھ سپشٹ بہومت کا آنکڑا پار کر لیا ہے۔ چناؤ آیوگ کے انوسار مت گڑنا دھیرے نہیں چل رہی ہے، اس میں کرونا کے کارن ولمب ہو رہا ہے۔ COVID-19 کے کارن اس بار 34,000 مدان کیندر بڑھائے گئے تھے، جس کے کارن کاؤنٹنگ راؤنڈ بھی بڑھائی گئی ہے۔ یدپی کچھ ورگوں کی اور سے EVM میں چھیڑ چھاڑ کے آروپ لگائے گئے تھے، लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना बिल्कुल गड़बड़ मुक्त रही है। वरिष्ठ चुनावी अधिकारी ने कहा कि नतीजे आने में देरी हो सकती है, लेकिन ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। मतगणना के बीच चुनाव आयोग ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बार मतगणना प्रक्रिया पूरी होने में समय लग जाएगा। अब तक के रुझान में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यू का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, वे तीसरे नंबर पर बनी हुई है। प्रारंभिक परिणामों को देखते हुए जनता दल यू महासचिव केसी त्यागी ने हार स्वीकार कर ली है, जबकि नतीजा अभी पूरा नहीं हुआ है।
एक साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ब्रांड नीतीश खत्म हुआ हो या ब्रांड आरजेडी प्लस हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ हम कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से हारे।
उधर दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में जीत का जश्न शुरू हो गया है और भाजपा कार्यकर्ता जमा होना शुरू हो गए हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा,
हम लोग तैयारी कर रहे हैं जश्न की, और ये पहले थोड़े से एग्जिट पोलों में जरूर थोड़ा सा कुछ उल्टा दिखा रहे थे, बट वो सब कुछ फेल हो गया है और वापस एनडीए की नीतीश बाबू की सरकार आ रही है।
ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, बाकी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार प्रदेश में चुनाव लड़े हैं और अभी भी हम कायम हैं अपनी बातों पे कि हमारी सीटें अधिक हो कम हो, नीतीश कुमार जी हमारे नेता थे और वही हमारे नेता रहे।
शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा के अंत में आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से, पर उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दस नवंबर के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट दिवस मनाया जाता है। मनुष्य में हमेशा से ही अपनी स्थिति को सुधारने व बेहतर करने की प्रवृत्ति विद्यमान है। उसने विज्ञान और तकनीक के माध्यम से जीवन यापन के प्राचीन ढंगों को छोड़कर नवीन तरीकों का आविष्कार किया। आधुनिक समय में विज्ञान और तकनीक ने हमारी प्रत्येक बाधा को दूर कर दिया है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस शांति व विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
इस समय सारे विश्व में शांति की बहुत ही आवश्यकता है। इस बोध से कार्य करने के लिए जोश और ऊर्जा प्राप्त होती है। युद्ध या किसी और प्रकार की तबाही अपने पीछे भय, चिंता या बदले की भावना छोड़ जाती है। उन लोगों में नफरत और बदले की तीव्र भावना पनपती है। ये गलत है, इसे हमें छोटी उम्र से ही समझना होगा। दबाव और तनाव हिंसा के मूल कारण हैं। जब हमारी शरीर प्रणाली से तनाव छूट जाता है तो उसके फलस्वरूप मन शांत हो जाता है। सहकार्य, जिम्मेदारी, मित्रता और अपनेपन का भाव जैसे मानव मूल्यों का स्वाभाविक रूप से विकास होता है।
वर्ष 2001 में आयोजित यूनेस्को के सम्मेलन में वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की घोषणा की गई। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य विज्ञान का इस्तेमाल शांति और विकास के लिए हो, न कि विध्वंसक गतिविधियों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था हर वर्ष वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट दिवस के अवसर पर एक संदेश जारी करती है और उसमें लोगों से विज्ञान की प्रगति और धरती के बचाव में सहयोग की अपील करती है।
Dear friends, we live in a new age of limits in resources and for our planet. This means we must make far more of the boundless energy of human ingenuity. We must release the full powers of innovation and creativity to craft new solutions that are inclusive, just, and sustainable. This calls for stronger science for sustainability. Science holds answers to key questions we must address today about equitable and inclusive development, about global sustainability. And when I say science, I mean all the sciences. Global challenges pay no heed to academic boundaries. Sustainability requires multidisciplinarity. We must build knowledge across all disciplines, bringing together the natural and the human and social sciences. Crossing disciplines is the path to innovation and social transformation. This calls also for connecting knowledge with policy by strengthening the science policy interface, by bridging the public and private spheres, and by capturing the insights of local knowledge systems.
विज्ञान की मदद से इंसानों ने कई तरह की खोज कर अपने जीवन को और बेहतर बना लिया है। विज्ञान के जरिए ही आज हम लोगों ने नई तरह की तकनीकों का आविष्कार किया है। वहीं हर रोज न जाने हम विज्ञान की मदद से बनाए गए कितनी तकनीकों और चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, इसके जरिए ही हम लोग नामुमकिन चीजों को मुमकिन बनाने में कामयाब भी रहते हैं। विज्ञान की मदद से ही हम अंतरिक्ष में पहुंचने से लेकर रोबोट कंप्यूटर जैसी चीजें बनाने में सफल हो पाए हैं। ऐसे में विज्ञान हमारे जीवन में काफी महत्व रखता है।
आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति से जहां जिंदगी आसान हुई है, वहीं इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। देश दुनिया में शांति और विकास के लिए विज्ञान के सदुपयोग को महत्व देने और शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा इस दिवस को 2002 में पहली बार शांति और विकास को लक्ष्य मानते हुए दुनिया भर में मनाया गया। यूनेस्को द्वारा इस तारीख पर शांति एवं विकास हेतु 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में मनाया गया। इस साल वर्ल्ड डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की थीम ओपन साइंस लिविंग नो वन बिहाइंड है। यूनेस्को की जनरल सेक्रेटरी एलिना बोकोवा अपने संदेश में आगे कहती हैं कि
UNESCO is pioneering at all these levels through its unique intergovernmental programs in the natural and social sciences, as well as its work for education for sustainable development. UNESCO is building on these foundations to lead the response to the United Nations Secretary General's request to create an international scientific advisory board to advise him and other organs of the United Nations. This was a recommendation of the report by the Secretary General's high-level panel on global sustainability, Resilient People, Resilient Planet. For UNESCO, sustainability and lasting peace are two sides of the same coin. Both are essential for crafting the future we want for all. UNESCO brought this message to the United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro earlier this year. This is our vision for World Science Day and all of our work for global sustainability.
विज्ञान वो व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान के ज्ञान भंडार के बजाय वैज्ञानिक विधि विज्ञान की असली कसौटी है, या प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने को ही विज्ञान कहते हैं, या किसी भी वस्तु के बारे में विस्तृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना और जानकारी को सही तरीकों से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन करना एवं उसका विश्लेषण करना ही विज्ञान है।
अंग्रेजी का साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। इसका अर्थ है जानना। विज्ञान शब्द का प्रयोग लगभग हमेशा प्राकृतिक विज्ञान के लिए ही किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति एवं भौतिक विज्ञान का व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान का अर्थ वर्तमान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के अनेक आविष्कारों के कारण ही आज दुनिया का जीवन बहुत आरामदायक हो गया है। दुनिया सिमट कर बहुत छोटी हो गई है। विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है जिसके द्वारा हम क्या, क्यों और कैसे का पता लगाते हैं।
दोस्तों, यहाँ तक हमने आपको विज्ञान की परिभाषा और उसके लाभ के बारे में बताया। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि विज्ञान के प्रगति पर किसका एकाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि विज्ञान में जो प्रगति हुई है उसे सभी को बराबर का लाभ उठाने का हक है। और विज्ञान की प्रगति दुनिया में शांति और विकास के लिए ही होनी चाहिए और सबको बेहतर दुनिया का उपहार देना चाहिए।
आज की दुनिया के सामने वैसे तो अनेक गंभीर समस्याएं हैं, पर इन सभी समस्याओं को प्रभावित करती हुई एक अधिक व्यापक समस्या यह है कि धरती की जीवनदायिनी क्षमता ही खतरे में है। जिन परिस्थितियों में धरती पर बहुत विविधता भरा जीवन पिछले लाखों वर्षों से पनप सका, धरती की वो जीवनदायिनी क्षमता खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल और बुल्गारिया की कूटनायिक इरीना बोकोवा ने अपने एक वीडियो संदेश में दुनिया के समस्त लोगों से पर्यावरण की सुरक्षा की अपील करते हुए 2030 तक का एजेंडा पेश किया।
On 25th September, at the United Nations Summit on Sustainable Development, member states agreed on a new vision for humanity, for the planet, for peace, for the next 15 years. Science will be essential to reach all goals of the new 2030 agenda. For this, we need to understand more clearly the global landscape of science, and we need better tools to monitor progress. This is the importance of the UNESCO World Science Report, issued every 5 years, to identify trends in science, technology, and innovation across every region.
इसकी एक वजह ग्रीन हाउस गैसों का तेजी से बढ़ना, जिससे धरती पर विभिन्न गैसों की विशेष अनुपात में मौजूदगी प्रभावित हो रही है। इन विभिन्न गैसों के कारण ही पृथ्वी पर इतना विविधता भरा जीवन पनप सका। ग्रीन हाउस गैसों, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी से विशिष्ट तौर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या और धरती का औसत तापमान बढ़ने की समस्या भी जुड़ी है। इससे जुड़ी हुई बहुत सी अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी हैं, जैसे जल संकट, वायु प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा का संकट, वन विनाश, जैव विविधता का तेज ह्रास, खतरनाक रसायनों व उत्पादों का तेज प्रसार आदि।
दूसरा बड़ा संकट महाविनाशक हथियारों की मौजूदगी है। एक ओर पृथ्वी पर 14,500 से अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं, तो दूसरी ओर उनके आधुनिकीकरण पर अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है। नए रोबोट हथियार तेजी से आ रहे हैं, जो आगे चलकर संभवतः इससे भी बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और मानवीय नियंत्रण से बाहर भी हो सकते हैं। इस संकट के समाधान के लिए हमारे पास बहुत समय नहीं है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित जलवायु वैज्ञानिकों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि धरती के औसत तापमान वृद्धि को 1.50 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लिए जो बहुत व्यापक बदलाव चाहिए, वो 2020-30 तक पूरे कर लेने चाहिए, अन्यथा ये संकट मानव नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। परमाणु हथियारों का उपयोग एक बार हो गया तो ये कहां जाकर रुकेगा, कोई सोच भी नहीं सकता।
विभिन्न प्रजातियों के लुप्त होने की रफ्तार बरकरार रही तो धरती पर जीवन का ताना बाना किस हद तक अस्त व्यस्त हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। गहरी जरूरत इस बात की है कि धरती की रक्षा का समग्र कार्यक्रम विश्व स्तर पर बने और इसे उच्चतम प्राथमिकता मिले। इसे जन आंदोलन का रूप भी देना चाहिए। अभी तक विभिन्न जन आंदोलनों व जन अभियानों में न्याय, समता, अमन, शांति व लोकतंत्र के मुद्दों को अधिक महत्व मिलता रहा है। इन सभी उद्देश्यों को धरती पर जीवन रक्षा की व्यापक जरूरत से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल और बुल्गारिया की कूटनीतिक इरीना बोकोवा ने अपने संदेश में आगे दुनिया के समस्त देशों से अपील की है कि वो मिलकर पृथ्वी और अपने भविष्य के निर्माण की कोशिश करें।
Across the world, we see increasing investments in smart specialization and green technologies to improve energy efficiency, to protect natural resources, to enhance competitiveness. Science, technology, and innovation hold key answers to the major challenges we face today. We must do everything to nurture and support the capacities of all countries to contribute to creating and sharing knowledge for the benefit of all. This is the message of the UNESCO Science Report and our message for the World Science Day for Peace and Development. Join us in taking this across the world to build a better future for all.
तो दोस्तों, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य विशेषकर इस साल कोरोना महामारी की वजह से यह है कि समस्त देशों के समान वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को दुनिया के सामने पेश किया जाना चाहिए ताकि इंसान और विज्ञान के सामने मौजूद समस्या को वैज्ञानिक शैली द्वारा हल किया जा सके। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
श्रोता मित्रों, कार्यक्रम कुरानी किस्से की अगली कड़ी को लेकर उपस्थित हैं स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। हमने इससे पहले सूर्य बकरा की आयत संख्या 158 के उतरने के कारण और पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा शुरू की थी।
मित्रों, हमने आपको ये बताया था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईश्वर के आदेश के अनुसार अपनी पत्नी हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल को काबे के पास निर्जन स्थान पर छोड़कर चले गए थे। ये उनका और उनके परिवार का एक इम्तिहान था।
हजरत इब्राहिम के वापस जाने के बाद हजरत हाजरा ने ईश्वर के आदेश का सम्मान करते हुए धैर्य से काम लिया। हजरत इब्राहिम अपनी पत्नी और इस्माइल के लिए खाने का जो सामान छोड़कर चले गए थे, हाजरा ने उसका प्रयोग किया। बाद में वह वस्तुएं भी समाप्त हो गई और स्थिति यह बन गई कि उनका दूध भी सूख गया। हाजरा खुद भी भूखी और प्यासी थी और उनका बच्चा भी। भूख और प्यास के कारण इस्माइल लगातार रो रहे थे, जिसके कारण उनकी माता हाजरा का धैर्य टूटने लगा था। अब वे अपनी भूख और प्यास भूलकर बच्चे के लिए पानी की तलाश में निकली।
पानी की तलाश में वे पहले सफा पहाड़ी की ओर गईं, किंतु वहां पर उन्हें पानी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद उन्हें सूरज की रोशनी में ऐसा लगा कि जैसे वहां कुछ दूरी पर पानी दिखाई दे रहा है। अब वे पानी की तलाश में मरवा पहाड़ी की ओर गईं, किंतु उनको वहां पर भी पानी नहीं मिला। इस प्रकार पानी की तलाश में 7 बार सफा और 7 बार मरवा पहाड़ियों के बीच वे इधर उधर गईं।
सातवीं बार जब वे चक्कर पूरा करके वापस आ रही थी तो देखा कि उनका बेटा इस्माइल प्यास की वजह से जमीन पर अपनी एड़ियां रगड़ रहा है। इसी बीच एकदम उनकी नजर अपने बेटे की एड़ियों के स्थान पर पड़ी तो देखा कि जहां पर इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहां से पानी निकलना शुरू हुआ। इस प्रकार वहां से पानी का सोता बहना शुरू हुआ। हाजरा थकी हुई अपने बेटे की ओर बढ़ी तो देखा कि वास्तव में इस्माइल के एड़ियां रगड़ने के स्थान पर पानी दिखाई दे रहा था। यह देखकर वे बहुत खुश हुई। इस पानी को देखते ही उनके मुंह से निकला जमजम। इस प्रकार से उस जलसोते का नाम जमजम पड़ गया, जो आज भी मौजूद है।
माँ और बेटे ने जमजम का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस घटना के कुछ समय के बाद वहां पर परिंदे आने लगे और उन्होंने वहां से प्यास बुझानी शुरू की। इस प्रकार से पक्षियों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि दूर दूर तक वहां पर कहीं भी पानी नहीं था। पक्षियों के वहां पर आने के साथ ही जुरहुम नामक कबीला, जो निकट ही वास किया करता था, जमजम के पास आकर बस गया। हाजरा ने उन लोगों को जमजम की पूरी कहानी सुनाई। समय बीतने के साथ ही साथ दूसरे कबीले भी जमजम के इर्द गिर्द आकर बसने लगे। इस प्रकार मक्के का सुनसान क्षेत्र बसने लगा और वो क्षेत्र एक आबाद नगर में परिवर्तित हो गया।
कुछ वर्षों के बाद हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबे का निर्माण किया और हज अदा की। हज में किए जाने वाले अनिवार्य कामों में से एक सई है, जिसके अंतर्गत हाजी सफा और मरवा के बीच 7 बार चक्कर लगाता है। सफा और मरवा के बीच 7 बार आना और जाना वास्तव में किसी काम को लगातार जारी रखने के अर्थ में है। इससे तात्पर्य है कि हाजी को यह बात समझना चाहिए कि समस्याओं के समय वह हिम्मत से काम ले और अपने प्रयास जारी रखे। वास्तव में सही यह उस महिला की आशा को व्यावहारिक बनाती है जिसने अपने बच्चे के लिए पानी ढूंढने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए और हिम्मत नहीं हारी।
भीतर से व्याकुल होने के बावजूद उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और अंततः उन्हें अपनी मुराद जमजम के रूप में हासिल हो गई। हाजरा ने उस स्थान पर पानी ढूंढने का प्रयास किया जहां पर दूर दूर तक पानी था ही नहीं और लोगों के विचार में भी नहीं था कि वहां पर पानी हो सकता है। ईश्वर ने उनके प्रयास को सराहते हुए वहां से ऐसा जल सोता जारी किया जो शताब्दियों के बाद आज भी जारी है। ईश्वर के आदेश पर जो कोई भी काबे की जियारत के लिए जाता है वो सफा और मरवा के बीच हजरत हाजरा के प्रयासों की याद में सई करता है और उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये कार्य निष्ठापूर्वक किए गए उस प्रयास पर ईश्वर की ओर से पारितोषिक दिए जाने की निशानी है, जो हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को लोगों के आभार व कृतज्ञता की प्रतीक्षा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे भले कर्मों से परिचित भी है और वो बेहतरीन पारितोषिक देता है।
इस्लाम के उदय से पूर्व अज्ञानता के काल में भी लोग हज करने के लिए मक्का आया करते थे। उस काल का हज अपने साथ कई प्रकार की कुरीतियां लिए हुए था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काल से आरंभ होने वाले हज में विभिन्न कालों में नादान और मूर्ति पूजा करने वाले लोगों द्वारा अनेक अनुचित बातें शामिल कर दी गई थी। इस्लाम ने इस महान उपासना के मूल रूप की सुरक्षा करते हुए उसे बुराइयों से दूर किया। अनेकेश्वरवादियों ने सफा नामक पहाड़ी पर एक मूर्ति रख दी थी जिसका नाम था असाफ, और उन्होंने मरवा पर एक अन्य मूर्ति रख दी थी जिसका नाम था नाइला। अज्ञानता के काल के हज करने वाले सफा और मरवा के बीच चक्कर लगाते और इन मूर्तियों का आदर व सम्मान किया करते थे।
صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے انیکیشور وادیوں سے یہ شرط رکھی تھی کہ اگلے سال وہ حاجیوں کے لیے راستہ کھول دیں۔ پیغمبر اسلام نے اسی سال یہ بھی آدیش دیا تھا کہ صفا اور مروہ پر رکھی ہوئی مورتیاں ہٹا دی جائیں۔ انہوں نے صفا اور مروہ سے مورتیوں کو ہٹا دیا، کنتو جیسے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعی سماپت کی اس کے بعد ہی صفا اور مروہ پر پھر مورتیاں لگا دی گئیں۔ پیغمبر اسلام کے ایک ساتھی ایک سال بعد جب وہاں پر آئے تو دیکھا کہ اس استھان پر تو مورتیاں لگی ہوئی ہیں، یہی کارن ہے کہ وہ طواف نہیں کر پائے۔ وہ سیدھے پیغمبر اسلام کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور انہوں نے ان سے اس کی شکایت کی۔
اسی سمے سورہ بقرہ کی آیت سنکھیا 158 اتری، جس میں ایشور کہتا ہے کہ نیسندے صفا اور مروہ ایشور کی نشانیاں ہیں، اتہ جو بھی ایشور کے گھر کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی بادھا نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے بیچ طواف کرے، اور جو کوئی بھلے کاریوں میں ایشور کے آدیشوں کا پالن کرے ایشور اس کے کرم کو جاننے والا اور پاریتوشک دینے والا ہے۔
متروں کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، اب ہم آپ سے انومتی چاہتے ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروتاؤ، ابھی آپ ساپتاہک کارکرم قرآنی قصے سن رہے تھے۔ ہمیں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کارکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں اور پرتکریاؤں سے ہمیں اوشیہ اوگت کروائیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir، اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہماری یہ سبھا یہیں پر سماپت ہوتی ہے۔ حسن عباس اور ساتھیوں کو انومتی دیجیے۔ خدا حافظ۔